जानवी ने रोते हुए कहा, नहीं नहीं मुझे नहीं खाना, प्लीज खाने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं। अमर ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा बाबा कोई जिद नहीं, अब बताओगी बात क्या थी? जानवी के चेहरे पर फिर से डर उभर आया, जिसे देखकर अमर परेशान होते हुए बोला, ऐसा भी क्या हुआ है जाना जो इतना घबरा रही हो? जानवी ने एक नज़र उस लैपटॉप की तरफ देखा जो अब भी वहीं पड़ा था जहां जानवी के हाथों से छूटा था, और उसकी आंखें फिर से भर आईं। अमर ने उसकी आंखों का पीछा करते हुए उस लैपटॉप को देखा। एक पल के लिए उसके माथे पर बल पड़ गए, पर अगले ही पल उसे समझ आ गया कि जानवी क्यों घबरा रही है। उसने धीरे से जानवी के होठों को अपनी उंगली से रगड़ते हुए कहा, वो तुमसे टूट गया। जानवी ने डरते हुए धीरे से हाँ में सिर हिलाकर कहा, लेकिन जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया, सच्ची। इतना बोलने के साथ ही वो बिल्कुल बच्चों की तरह रोने लगी, और अमर ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं नया ला दूंगा, तुम्हें रोने वाली कौन सी बात है? ऐसा तो है नहीं कि वो एक ही लैपटॉप था और अब नया नहीं आ सकता। बट रिमेम्बर वन थिंग, यू आर स्पेशल, क्योंकि तुम टूटी तो नई नहीं मिलेगी, मुझे एक और प्यारी सी जानवी, फिर मैं बीवी किसे बोलूंगा? रोते नहीं है बेबी, तुम्हें पता है तुम्हें रोते हुए देखकर ऐसा फील हो रहा है जैसे तुम मुझे रोकर टॉर्चर कर रही हो, सो प्लीज डोंट डू दैट। मैं तुम्हारे लिए ठंडे पानी की पट्टी लेकर आता हूँ, एंड रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जाना, रोना नहीं। जानवी ने धीरे से हाँ में पलकें झुका दी, और अमर उसके गाल पर हल्की सी किस करते हुए वहां से उठकर बाहर की तरफ चला गया। समर्थ का प्राइवेट बंगला। वो डॉक्टर जैसे ही बाहर आई, दरवाजे के पास ही समर्थ खड़ा था। उसने जल्दी से पूछा, क्या हुआ है उसे? डॉक्टर ने एक नज़र अंदर की तरफ देखा और फिर गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, वो उन्होंने खाना नहीं खाया है 2-3 दिन से, इसलिए उन्हें चक्कर आने लगे हैं, उन्हें खाने की ज़रूरत है, अगर नहीं खाया तो जिंदा रहना मुश्किल है इनका, इसलिए इनकी तबीयत का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए आपको। डॉक्टर ने सब एक सांस में बोल दिया था। समर्थ ने उसे जाने का इशारा किया और खुद वहां से किचन की तरफ बढ़ गया, जहां सब्जी बनी हुई थी, बस रोटी बनाने की देरी थी। उसने गैस ऑन करते हुए रोटियों को बेलना शुरू किया। दूसरी तरफ रावत मेंशन। अमर जल्दबाजी में सीढ़ियों से उतर रहा था। हॉल में रजत जी और कल्याण सिंह जी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। उन्होंने उसे इतनी जल्दबाजी में आते देखकर पूछा, क्या हुआ अमर? अमर ने किचन की तरफ जाते हुए कहा, आपकी बहू की तबीयत खराब है। इतना बोलकर वो किचन के अंदर चला गया। उसके जाते ही रजत जी और कल्याण सिंह जी ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर जल्दी से उठते हुए अमर के कमरे की तरफ चले गए। वहां जाते ही रजत जी ने दरवाजे पर नॉक करते हुए कहा, बेटा क्या हम अंदर आ जाएं? जानवी जो लेटी हुई थी वो जल्दी से बेड से टेक लगाकर बैठते हुए बोली, जी पापा जी आप अंदर आ सकते हैं। अंदर जाते ही दोनों बाप बेटे ने एक बार फिर एक दूसरे को देखा और फिर जानवी के पास जाते हुए बोले, क्या बेटा हमको खुशखबरी देने वाली हो तुम? रजत जी ने बेसब्री से कहा। हाँ मेरे तो कान तरस गए हैं सुनने के लिए। जानवी ने कन्फ्यूजन से दोनों को देखा, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन दोनों के कहने का मतलब क्या है। खुशखबरी? आखिर बीमार होने पर कौन सी खुशखबरी दी जाती है? पर अगले ही पल उसके सारे सवालों के जवाब मिल गए, जब कल्याण सिंह जी ने एक लंबी सी स्माइल के साथ कहा, आखिर अमर पोता किसका है, तो अब तुझे भी इतनी जल्दी एक पोता तो दे ही सकता है। कल्याण सिंह जी की बात सुनकर जानवी को समझ आया कि उनके कहने का क्या मतलब था, और उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया, साथ ही उसे हंसी भी आ रही थी। ये दोनों कैसे बच्चों की तरह खुश होते हुए आए हैं? रजत जी ने आंखें छोटी करके कहा, आपका पोता हुआ तो क्या हुआ कल्याण सिंह, मेरा तो बेटा है ना। वो दोनों आपस में ही बहस करने लगे थे। कल्याण सिंह जी ने फुल एटीट्यूड में कहा, तू क्यों आया था इस दुनिया में? रजत जी ने जवाब दिया, क्योंकि आप और माँ चाहते थे। कल्याण सिंह जी ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, तो बस तू आया तभी अमर आया, अमर है तभी मेरा परपोता आएगा, मतलब पीढ़ी में सबसे बड़ा मैं हूं ना, तो ये बोलने का हक सिर्फ मुझे है, तुम्हें नहीं, समझे? रजत जी को अपने पिता की बात सुनकर चिढ़ मच रही थी। उन्होंने मुंह फेरते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे भी सारे हक हैं, मैं भी ये बोल सकता हूँ, समझे आप, बस आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ तो ज्यादा बोल नहीं रहा हूँ, समझे आप। उन्हें आपस में ही बहस करते देख जानवी ने धीरे से कहा, वो आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, बस बुखार है हल्का सा।